ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है तो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे। आज एक्टिविटी का नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो श्याम भाई एक्सप्लेन करेंगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एक्टिविटी करनी है।
ओम शांति। जैसे आपने सुना बटरफ्लाई इफेक्ट, तो यहाँ पे आप सामने देख रहे एक बटरफ्लाई बना हुआ है और उसके पंख किस तरह से होते हैं। जब बटरफ्लाई जो है अपने पंख जो है फड़फड़ाती है, तो एक स्टोरी है छोटी सी। एक व्यक्ति होता है, वो ऑलरेडी 8-9 बार किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो उसे जब अगली बार बुलाया जाता है तो वो दोबारा जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है। और जब वो वहां पे एंट्रेंस मतलब हॉल में एंट्री करने वाला होता है तो वो देखता है कि वहां पे जो डोर मैट है वो नीचे गिरा हुआ होता है। तो वो डोर मैट उठा के अपनी जगह पे ठीक से रख देता है। फिर जब हॉल में वहां पे जाके देखता है तो वो 2-3 लोग बैठे हुए होते हैं। फिर सामने का जो सोफा होता है उस पे जो तकिए होते हैं वो खराब होते हैं, मतलब अस्त व्यस्त रखे होते हैं। तो वो उसे भी ठीक से रख देता है। उस पर देखता है कि जो घड़ी है लटकी हुई है, घड़ी थोड़ी टेढ़ी है, तो वो घड़ी को भी सीधी कर देता है। तो उसके जैसे संस्कार होते हैं। और फिर जब उसका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, वो जब जाता है तो अंदर 3 लोग बैठे हुए होते हैं और उसे पूछते हैं सीधे कि आप कब से जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं और आप सीधे मुझे जॉब ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जब से इस हॉल में आए आपने जो वो डोर मैट ठीक से किया, घड़ी ठीक से की, जो सोफा पे कुशंस वगैरह थे उसे आपने ठीक से किया, उसी समय आपका इंटरव्यू हो गया करके। तो ये कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है बाद में मालूम पड़ा। तो बटरफ्लाई इफेक्ट जो है ये भी उसी तरह से है कि कोई कोई चीजें जो है हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे आप हम यहाँ बटरफ्लाई देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो बटरफ्लाई जो है नॉर्मल अपने पंख फड़फड़ा रही है, लेकिन उसका जो है इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में। तो जो साइंटिस्ट था एडवर्ड लॉरेंज, 1960 में अमेरिका में इसने एक जाने अनजाने में इससे खोज हो गई और इस खोज को नाम दिया गया बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बटरफ्लाई इफेक्ट में उसने ये बताया कि जो तितली है अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसके वजह से तूफान आ सकता है। जो तूफान आते हैं ना, तूफान या आंधी तूफान आ सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो जहां पर अपने पंख फड़फड़ा रही है वहां पर ही आंधी तूफान आए। हो सकता है वो अपने पंख जो है माउंट आबू में फड़फड़ा रही है और तूफान अहमदाबाद में आए या बॉम्बे में आए कहीं पर भी आ सकता है। तो इसे नाम दिया गया बटरफ्लाई इफेक्ट। इसे देखा जाएंगे तो वो जो मैथमेटिशियन था और अंतरिक्ष विज्ञान जो था उसका साइंटिस्ट था वो, तो मैथ्स के इसमें देखा जाएगा तो बहुत सारे इसमें उन्होंने इसके सम्स वगैरह वो सारा बताया हुआ है। तो उसका कहना था कि जब तितली जो अपने पंख फड़फड़ाती है तो इस रूप से उसके पंख जो है फड़कते हैं, तो उसका जो है हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो कहने के लिए बात यह है कि जैसे ये एक ट्रिगर का काम करता है, ऑलरेडी कोई चीज होने वाली है और जब तितली उसी समय अपने पंख फड़फड़ाती है तो उस चीज को बूस्ट करता है ट्रिगर। जैसे चेन प्रोसेस होती है तो उस चेन प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर तितली उस समय अपने पंख न फड़फड़ाए तो हो सकता है कि वो चीज आगे बढ़े ही नहीं, वो चीज जो है वहीं पे रुक जाए। तो इसे जो नाम दिया गया है इसे जो है केओस थ्योरी के अंदर लिया जाता है। केओस थ्योरी माना जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हो ही भविष्यवाणी। ये सरप्राइज है, साइंस ऑफ सरप्राइज जिसे कहते हैं केओस थ्योरी को। तो ये जो है थ्योरी जो है उसके अंदर आती है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या वेदर की भविष्यवाणी हो गई। कई बार हम सुनते हैं ना तूफान आने वाला है लेकिन हो सकता है ना भी आए तूफान, जैसे कई बार सुनामी की भविष्यवाणी होती है लेकिन हो सकता है ना भी आए सुनामी। तो ये उस केओस थ्योरी के अंदर आता है। तो इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। कोई चीज जैसे हमें यहाँ पे छोटी सी दिखाई दे रही है लेकिन भविष्य में जाके उसका काफी जो है बड़ा रूप दिखाई देता है। जैसे एक व्यक्ति होता है 1905 में, वो आर्टिस्ट होता है और वो पेंटिंग बनाता है। तो वो दो बार जॉब के लिए जाता है, उसे फेल कर दिया जाता है कि आप ये क्या फालतू पेंटिंग बना रहे हो, कुछ काम की नहीं इस तरह से, उसे जॉब में नहीं रखा जाता है। तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे जाके जो है फिर जर्मनी में आर्मी ज्वाइन करता है। और वो जो व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के निमित्त बनता है, और वो व्यक्ति होता है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में हम सब जानते हैं। तो कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, अगर शायद उसका उस समय सिलेक्शन हो गया होता जॉब में तो उस जॉब में एंगेज हो गया होता और शायद वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ भी नहीं होता जो बताया जाता है, लेकिन छोटी सी बातें आगे जाके भविष्य में उसका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। ऐसे वियतनाम वॉर के लिए कहते हैं कि वियतनाम जो है पहले फ्रांस के अंडर था, लेकिन 1999 में एक जो व्यक्ति था उसने, जो वुड्रो विल्सन था अमेरिका का प्रेसिडेंट उस समय, उसे एक लेटर दिया था कि प्लीज आप ये लेटर पढ़िए, लेकिन उसने उस लेटर की ओर ध्यान नहीं दिया और उसने वो लेटर साइड में रख दिया और उसके वजह से आगे जाके वियतनाम वॉर हुआ और 1945 में वियतनाम जो है फ्रांस से फिर अलग हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने बाहर के देखे। अब डॉक्टर हिना जो है हमारे, हमें कुछ ज्ञान के हिसाब से समझाएंगे कि एक्चुअली बटरफ्लाई इफेक्ट हम ज्ञान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है।
ठीक है, तो ये हमने जाना कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, अभी स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि अभी हम आपको चार सिचुएशंस देंगे, तो जैसे इन्होंने कहा कि ना माउंट आबू में अगर बटरफ्लाई फड़फड़ाएगी तो बॉम्बे में तूफान आ सकता है, तो ये जो चार बटरफ्लाई है ये मधुबन निवासी है, ओके, ब्राह्मण आत्माएं हैं और ये मधुबन में कुछ कुछ कर रहे हैं, तो अब इसका इफेक्ट बाहर क्या होगा। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मधुबन गुंबज है और जो ब्राह्मण आत्माएं यहाँ पर संकल्प करेगी उसका संकल्प का जो असर है और जो स्पीड से वो फैलता है वो बहुत तेजी से फैलता है। तो ये बटरफ्लाईज मधुबन में है और अगर यहाँ पे ये ऐसे कुछ करे तो उसका आगे जाके इफेक्ट क्या होगा, या अब इफेक्ट क्या हो रहा है संसार पर, या ब्राह्मण परिवार पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और जैसे बाबा कहता है ना कि हम पूर्वज है, एंसेस्टर है, आधार मुहूर्त है, तो जैसे हम संकल्प करते हैं संसार पर उसका इफेक्ट होता है। अगर हम खुश है तो संसार खुश है, अगर हमारी स्थिति डाउन तो संसार की आत्माओं की स्थिति डाउन, अगर हम व्यर्थ में है तो संसार व्यर्थ में है। तो यही है बटरफ्लाई इफेक्ट स्पिरिचुअलिटी में। तो अब हम चार ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और फिर हम बताएंगे कि एक्टिविटी क्या करनी है। तो चालू करें, 1 2 3 4 1 नहीं, अच्छा नहीं, 3 4 ऐसे बोलते जाओ, 1 2 3 4 ना, 3 जोर से बोलेंगे, अपना नंबर्स याद रखो, चलो जल्दी बोल दो, विनोद भाई 3 3 4 4 सबको अपने नंबर्स याद है, तो 1 इधर आ जाए, सब 1 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए राइट साइड पे, 3 जो है वो एक्चुअली आप लोगों को जमीन पर बैठ के करना है, हाँ, क्योंकि चार्ट बनाने हमको। तो पहली ग्रुप कौन सी है, पहला ग्रुप, हाँ, तो ये बटरफ्लाई है जो रोज, तो पहली तितली, हाँ, बटरफ्लाई है वो मधुबन में है, रोज मुरली पढ़ती है, रोज मुरली सुनती है, मुरली का मनन चिंतन करती है, अव्यक्त मुरली रोज पढ़ती है, ज्ञान के पॉइंट्स लिखती है, मनन लिखती है, सिमरन करती है। तो अब ये मधुबन में ये मुरली, ये बटरफ्लाई ऐसी है, तो अब इसका आगे जाके क्या इफेक्ट होगा, जैसे समझा है ना बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, तो संसार पर उसका क्या इफेक्ट होगा, ब्राह्मण परिवार पर उसका क्या इफेक्ट होगा और उस पर। तो आप लोगों को चार्ज दिए जाएंगे चारों ग्रुप्स को और कुछ मटेरियल भी दिया जाएगा, तो इस सिचुएशन को आप कैसे भी उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। मैगजीन्स दिए जाएंगे, उसमें से कुछ कटिंग्स कर सकते हैं आप फोटोग्राफ्स की, और फोटोग्राफ्स चिपका के अपनी सिचुएशन को, वो कोलाज वर्क जिसको बोलते हैं, उसके रूप में वो चार्ट बनाना है। आपको स्लोगन्स लिखने हैं या आपको कुछ भी मुहावरे लिखने हैं, जो भी लिखना है उस पर लिख सकते हैं, कोई वाक्य लिखना है या ड्राइंग करनी है डायरेक्टली, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव होना है चार्ट पे। तो ये पहली ग्रुप है। अभी हमने 2 पॉजिटिव सिचुएशन लिए, 2 नेगेटिव, तो ये सेकेंड ग्रुप है। कोई ब्राह्मण आत्मा है जो बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी बहुत गुस्सा करती है, रोज उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है उसको बहुत, बार बार रूठ जाती है, बार बार रूसना, अपसेट हो जाना, उसका लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं मिलता जुलता, झगड़ा करती रहती है। तो अब ये बटरफ्लाई मधुबन में है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सेकेंड। थर्ड ग्रुप, तो ये ब्राह्मण आत्मा जो है ये परचिंतन में, परदर्शन, और ये परवश है, मनमत चलाती है, गॉसिपिंग करती है, यहाँ की बात वहां लगाती है, बहुत टाइम वेस्ट करती है। ये ऐसी बटरफ्लाई है मधुबन में। और जो चौथी बटरफ्लाई है, इसका 4 घंटे का योग का चार्ट है। ये बेहद में सकाश देती है, पावरफुल अमृत वेला करती है, नुमा शाम का योग करती है, दिन भर छोटी छोटी ड्रिल्स करती है, दिन भर अशरीरीपन का अभ्यास करती है, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलरली करती है, 5 स्वरूप का अभ्यास रेगुलरली करती है। ये ऐसी बटरफ्लाई मधुबन में। तो ये चौथा ग्रुप है। कोई एक आ जाए तो अभी जो टीम लीडर्स है वो हमारे पास आ जाए, हम आपको मटेरियल देंगे। आपके पास आधा घंटा है, जैसे कहा कि वो कोलाज वर्क आपको चार्ट पे प्रिपेयर करना है। हर ग्रुप को 3 मिनट से 4 मिनट मिलेगा अपना चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका इफेक्ट आपने क्या बताया। ग्रुप में से 2-3 लोग बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं बोलना है, पर 2-3 लोग डिसाइड करना, वो लोग बोलेंगे। तो आपके पास 1/2 आवर होगा ये चार्ट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अभी जो टीम लीडर्स है वो हमारे पास आ जाइए, मटेरियल हम देंगे। वो सब आप लोगों को सोचना है, आपको सोचना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। वो जो बटरफ्लाई ऐसे फड़फड़ा रही है गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप लोग सोचो, जितना सोच सकते हैं। मुरली में बाबा के बहुत महावाक्य आते हैं जो चारों सिचुएशन आपको दी है, जैसे आगे जाके क्या होगा या उसका पद क्या होगा, है ना, उसकी स्थिति क्या होगी, कुछ भी सोच सकते हैं आप।
इसमें आप सभी को एक्सप्लेन भी करना है कि आपने ये क्या बनाया हुआ है, इसलिए वो भी डिसाइड कर ले। ओम शांति, ओम शांति।
ग्रुप 4 आ जाओ। कौन आएगा पहले? ग्रुप 1। चलो अभी सबका सुनना है, सबका सुनना है। ग्रुप 1 आ रहा है, ठीक है। पहले अपनी सिचुएशन बताना, 2-3 लोग बोलेंगे,
पीछे आ जाएंगे ना, खड़े रहेंगे ना।
हाँ, अपने अपने ग्रुप नंबर्स लिख दो चार्ट पे।
ओम शांति। हमारी सिचुएशन थी कि जब मधुबन में पढ़ाई की जाती है, मधुबन में अव्यक्त मूल्यों का मनन, चिंतन, अध्ययन किया जाता है, तो उसका विश्व में क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर हमने एक बटरफ्लाई निकाली है, ये तितली है, तो इसका क्या क्या असर है। बटरफ्लाई का ये जो भाग है इसमें हमने स्थूल बातें ली है और यहाँ पे सूक्ष्म बातें ली है। यहाँ पर जैसे कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे संकल्प कैसे होते हैं, फिर हमारे बोल कैसे होते हैं, कर्म कैसे होते हैं, स्मृति कैसी होती है, संबंध कर्म कैसे होता है, चलन, पढ़ाई, आदतें और संस्कार। जैसे जैसे हम पढ़ाई करने लगते हैं हमारे संकल्पों में परिवर्तन आता है, हमारे बोल में परिवर्तन आता है, कर्म में परिवर्तन आता है, हमारी स्मृति बदलने लगती है, संबंध संपर्क बदलने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, चलन बिहेवियर बदलने लगती है, और जो हम पढ़ाई करते हैं उसी पढ़ाई से और अधिक पढ़ाई करने की इच्छा होती है, आदतें बदलने लगती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर जब सूक्ष्म में मतलब मधुबन में जो भी कुछ किया जाता है उसका फिर प्रभाव संसार में पड़ता है। पहले तो हम पर ही प्रभाव पड़ता है और फिर धीरे धीरे संसार पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। संसार में प्रकंपन फैलते हैं, वाइब्रेशंस फैलते हैं, संसार की दृष्टि, वृत्ति, कृति, उनके हमारे जो संकल्प होंगे उनके आधार पर, इन प्रकंपनों के आधार पर उनके भी संस्कार परिवर्तन होंगे, उनके भी संकल्प परिवर्तन होंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारे चित्र दिखाए हुए हैं, जैसे ये माउंट अबू लिखा हुआ है, ये मधुबन, तो ये इधर न्यूटन का लॉ भी दिखाया हुआ है कि कर्मों का सिद्धांत आत्माओं को कैसे समझ में आता है, ये मधुबन दिखाया हुआ है, ये कर्म दिखाया हुआ है, ये बच्चे खेल रहे हैं तो उनके कर्म, उनकी आदतें, उनकी चलन परिवर्तन होती है। यहाँ पर ये रामानुज है मैथमेटिशियन, वो दिखाया हुआ है तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र और शार्प हो गई है, अभी मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर रहा है वो, तो उसके साथ ये सारे लोग हैं। उसके बाद में ये भी रामानुज है, ये एक दूसरा टीचर है, अभी उसके प्रोफेशन में, उसके कर्म में परिवर्तन आई, दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन आई, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जो बड़े लोग हैं इनमें भी परिवर्तन आया है। ये भारत का नक्शा है, ये भारत दिख रहा है यहाँ पर, ये भी भारत है, देख लेना है तो ये भारत दिख रहा है, और ये अय्यर जी है, योगासन कर रहे हैं तो इनके भी इसमें सब परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से ये जो बटरफ्लाई, ये बड़ा रंग बिरंगी बटरफ्लाई है, तो जैसे ही मधुबन में जो कुछ किया जाता है उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। अच्छा एक मिनट, इसमें से किसी को कुछ एडिशन करना है तो करो।
ये जो चित्र दिखाया है ना माउंट आबू का, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य है और वायुमंडल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। इसका प्रभाव उधर पड़ता है, जैसे भाई बहन जो भी आते हैं पॉजिटिव लेके जाते हैं और यहाँ से प्रसाद अपना आगे करके जाते हैं, बढ़ाते हैं।
यहाँ ये स्टडी जो होती है मधुबन में, इसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ता है। यहाँ आध्यात्मिक इन्वेंशन हम लोग करते हैं तो वहाँ विश्व में जो साइंस तरक्की को पाती है।
यहाँ हमने बटरफ्लाई वाली एक्टिविटी की, अब ये एक्टिविटी विश्व भर में होगी।
यहाँ से बादल भर कर जाते हैं और फिर जाकर बरसते सारी दुनिया में, विश्व में।
यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये मैसेज कि पहले आप स्वयं को परिवर्तन करिए तो विश्व परिवर्तन होगा, तो ये यहाँ पर साकार रूप में आप देख सकते हैं।
जैसे कर्म हम करेंगे वैसे अन्य भी करेंगे।
ये देखो गुस्सा आना शुरू हो गया है, बोला इतना ही है। गुस्से वाले लोग तो छड़ी पकड़ेंगे ही। तो ये होमवर्क दिया गया था हमको, एक्टिविटी दी गई थी कि ब्राह्मण जीवन के बाद, ज्ञान लेने के बाद जो गुस्सा आता है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव और बाहर दुनिया के जीवन, दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो टॉपिक है, फड़फड़ाती क्रोधी तितलियों के भयानक रूप। फड़फड़ाती तितलियों के, क्रोधी तितलियों के भयानक रूप। तो इसमें दिखाया क्रोध के कितने परिणाम होते हैं, भयानक परिणाम, आक्रमण, हिंसा, थकावट। फिर ये दिखाया हुआ है हताश, निराश, असफलता होती है तो हताश हो जाते हैं, अहंकार जन्म लेता है। फिर समय पूर्व ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगते हैं, दुख चेहरे पर झलक रहा है पूरी तरह से। फिर एकाग्रता भंग, हमेशा गन पॉइंट हमारी स्मृति में रहता है, अगर खुद भी परेशान रहेंगे ना खुद जिएंगे ना खुद दूसरों को जीने देंगे, ये उनका मंत्र रहता है, ना जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, ये गुस्सा है। और ये सामने दिखाया कि हताश, निराश, फेलियर, और उसके रूठ गया है क्योंकि उसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी गुस्से का भयानक परिणाम है। और ये तनाव, तनाव है एक लाइफ स्टाइल, जो उसका तनाव ही लाइफ स्टाइल जैसे बन गया है, तनाव में रहना, बिना गुस्से के काम ही नहीं होता है। और सोने के जो मटके थे वो सूख रहे हैं, पानी थोड़ा सा रह गया, एकदम भयानक जो है प्राकृतिक आपदा अपना भयानक रूप ले रही है। इधर सामने देख रहे हैं मानसिक विकृतियां कैसे बढ़ती हैं, तो तूफान आते रहते हैं, मन में हमेशा हलचल रहती है और बम विस्फोट हो रहा है। तो इसका परिणाम जो है पूरे संसार में दिखाई दे रहा है, जो आपस में बाबा ने कहा जो रशिया अमेरिका आपस में लड़ेंगे तो ब्राह्मणों का गुस्सा ही तो उनको काम करेगा ना। एक भाई थे हमारे मधुबन में पुराने भाई, बोला ब्राह्मण इतने लोग गुस्सा छोड़ते आखिर ये जाता कहां है। तो ये संसार में उसी का तो प्रकोप पड़ रहा है, तो ये गुस्से के ऊपर है। बाकी ये सब अपना अपना योगदान देंगे, आगे गुस्से में क्या है ये बताएंगे धीरे धीरे।
इसमें ये बताया कि गुस्से वाला जो है वो भी योगी है, हम लोग जब यहाँ भी योग, गुस्से वाले जो ब्राह्मण है वो यहाँ योग नहीं कर सकते, बैठते हैं। और उससे क्या होता है, जो जो और भी जो बाहर दुनिया में जो जो भी गृहस्थी ब्राह्मण है उन पे हमारी वाइब्रेशन जाती है, हम क्योंकि यहाँ हमारा योग नहीं ठीक लग रहा तो उनका भी नहीं लगता है। हम गुस्से में है तो हमारे गुस्से की वाइब्रेशन उनको जा रही है, व्यर्थ के संकल्प हमारे अंदर है तो उनके अंदर भी हो जाते हैं, तो ये हमारा प्रभाव दूसरों पे पड़ता है।
तो कहा जाता है कि हम अगर इरिटेट भी होते हैं तो लास्ट जो कल्पवृक्ष का पत्ता है वो सामने जाकर के मर्डर कर देता है, तो वो असर हमारा, उसका जिम्मेवार भी हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इतने सारे परिणाम भी ध्यान में रखेंगे तो आने वाला चिड़चिड़ापन, गुस्सा सारा कम हो जाएगा।
यहाँ ब्राह्मण हम अटेंशन के बदले टेंशन में आ जाते हैं, उसका असर फिर दुनिया में भी पड़ता है कि वो हर कर्म टेंशन से करते हैं। और फिर यहाँ योगी भी क्रोधी बनता है, तो द्वापर के जो ऋषि मुनि भी वो क्रोध करने लग
जाते। गुस्से से बुद्धि का विनाश हो जाता है, कुछ अच्छा काम भी करने चलते हैं वो भी गलत हो जाता है।
हमारे ग्रुप को जो टॉपिक मिला वो परचिंतन, प्रदर्शन, परमत। तो हम लोगों ने शुरू किया कि ये पहले दिमाग का काम शुरू होता है यहाँ पे, कैसे दिमाग परचिंतन में डूबा हुआ है चारों तरफ, और फिर जब दिमाग हमारा पूरी तरह से परचिंतन से भर जाता है तो हम चले जाते हैं ग्रुप में और उसको दूसरों के साथ बांटने लगते हैं। ग्रुप्स में एक दूसरे से बांटते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, फिर हम साइड सीन में व्यस्त हो जाते हैं, और वो साइड सीन देखते 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 क्या करते फिर ये वाइब्रेशन ये फैल रही है सारी दुनिया में, और फिर हम इस दुनिया को क्या करते हैं डस्टबिन में धीरे धीरे पला देते हैं। और फिर हमारा जो स्लोगन रहता है क्या होता है कि हम तो डूबेंगे सनम सबको भी लेकर डूबेंगे। अब आगे जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है दुनिया पे वो बहन जी बताएंगे।
जैसा कि हम लोग को टॉपिक मिला है पर चिंतन पर दर्शन, इससे पहले सबसे पहले क्या होता है कि हम खुद ही आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि जब वो कमजोर होती है तो उसमें अपना मन मत मिक्स करती है, और मन मत मिक्स करती है और श्रीमत के विपरीत जाती है तो अपने को जिद अपना सिद्ध करना चाहती है। तो वो उसका असर हमारे पे पड़ता है कि हम ये सोचते हैं चार लोग के बीच में गॉसिप करते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, मगर वो कहीं ना कहीं से वो घूम के उस आत्मा तक बातें पहुंचती हैं। और फिर सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ता है कि दो संबंधों में मनमुटाव आ जाता है, और इसका असर फिर हम सोचते सोचते इतना ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि एक शरीर से हम दिन भर मेहनत करते हैं तो जितना असर नहीं पड़ता है, अगर हम आधा घंटा व्यर्थ और पर चिंतन पर दर्शन छोड़ लें तो उसका शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो शारीरिक बीमारी शुगर डायबिटीज जो भी है हाई ब्लड प्रेशर सारा इसी से यही कारण है, और इसका पूरा असर हमारी शारीरिक और मानसिक कमजोरी, पहले तो हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मन का असर तन पे पड़ता ही है, तो वो हमारा हम शारीरिक रूप से भी, और हमारी स्थिति सबसे पहले गिरना शुरू होती है, और हम जितना कमजोर होते जाते हैं हम उसको उठने के लिए कोशिश करते हैं, और गिल्ट भी फील होती है, सबसे पहले हमको गिल्ट फील होती है, हम उसको अकेले में सबको समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया क्या सही किया, मगर वही फिर उसको आर्गू करते हैं कि नहीं हम सही हैं हम वो करते हैं, तो और आत्मा गिरती जाती है। तो सबसे खतरनाक ग्रुप हमको तो लगता है हम ही लोग का है।
ओम शांति। जिसको स्वचिंतन स्वदर्शन नहीं है वही लोग परचिंतन परमत परदर्शन में जाते हैं। तो क्यों हम परदर्शन में जाते हैं, क्योंकि हम जब अकेलेपन लोनली होते हैं तो वही दूसरों के प्रति, अगर दूसरों के प्रति सोचते रहते हैं खुद को प्रति सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही क्या है इधर चाइम्स दिखा है, चाइम्स क्या कहते हैं अगर वो हवा आते समय वो जो आवाज है उसको फैलता है एनवायरमेंट में, वैसे ही वो हवा मतलब वो गॉसिप है कुछ हमको एक्चुअली हमको क्या न्यूज है वो एक्चुअली हमको पता नहीं था, फिर भी हमारा सोच को मिक्स करके हम फैलते हैं, वैसा ही ये भी एनवायरमेंट में फैलता है। तो उसका इफेक्ट जैसा डस्टबिन कचरा को इधर उधर उधर हम डालते हैं ना, वैसा ही डस्टबिन जैसा हमारा मन भी माइंड भी डस्टबिन जैसा बन जाता है, तो डस्टबिन से कचरा मिलता है ना, तो वैसे ही ये दुनिया में फैलता है और एनवायरमेंट भी, और अगर इधर एनवायरमेंट ऐसा है तो वो क्योंकि वाइब्रेशन इजी फैलता है ना, वैसा ही बाहर दुनिया भी कचरा होता है।
पर चिंतन करने वाली आत्मा सोचती है कि शायद वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, उसको लगता है कि मुझे सारी दुनिया के बारे में पता रहता है, लेकिन पर चिंतन करने से वो आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वो अपना सेल्फ एनालिसिस करना भी, उसको सेल्फ एनालिसिस करने की भी शक्ति नहीं रहती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पर चिंतन पर दर्शन का हमारी स्थिति के ऊपर पड़ता है, शायद गुस्से से भी ज्यादा इफेक्ट उसका।
फर्स्ट ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के लिए तो जो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया बनानी है तो वो उसकी नींव मजबूत करते हैं, और जो हम लोग सेकंड और थर्ड ग्रुप दिया है वो वास्तव में आसुरी संस्कारों को मजबूत करते हैं जो विनाश का कारण बने हैं।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हम तीन सुन लिए हैं, अभी चौथा में हम सुनने जा रहे हैं। ये चौथा ग्रुप का था सिचुएशन कि किसी का चार घंटा योग चार्ट है, बेहद का सकाश देता है, पावरफुल अमृत वेला है, और नुमा शाम का योग भी पावरफुल है, दिन भर छोटी छोटी योग की ड्रिल भी करते, पांच स्वरूप का अभ्यास भी साथ में चलता है, अशरीरीपन का भी अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल भी सब कुछ करते हैं, तो उसमें उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कि यह है पावरफुल योग। तो पावरफुल योग से जैसे सूर्य की किरण आने से क्या होता है, तो रोशनी आ जाती है। तो अगर हम पावरफुल योग करते तो हमारे जीवन में रोशनी तो आती है, लेकिन दूसरों को भी जीवन में हमारे जीवन से प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन में भी रोशनी आती है। तो पहला ये, दूसरा है पांच स्वरूप का अभ्यास। पांच स्वरूप में देखिए, अनादि स्वरूप आत्मा, ब्राह्मण, देवता, पूज्य स्वरूप, इससे क्या होता है ना, इससे भी हमारा क्या होता है, तो वाइब्रेशन बनता है, पावरफुल स्थिति बनता है। हम जहाँ रहते हैं उस स्थान का बहुत ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन बनता है। एक तितली फरिश्ता स्वरूप में दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ जो है ना नुमा शाम के योग से पवित्रता के प्रकंपन आसपास वाले तो क्या सारे संसार में फैलता है। एक ब्रह्मा बाबा के पवित्रता के प्रकंपन, मम्मा के प्रकंपन से इतने बच्चे हम पैदा होकर यहाँ आ गए हैं। ये है अशरीरपन का अभ्यास, ये है अशरीरपन का अभ्यास। बीच बीच में मैं आत्मा हूँ, आत्मा के जो मौलिक गुण है उस गुण में स्थित होने का ये दिखाया गया है। और यहाँ पे है कि चार घंटा योग से बेहद का सकाश से वातावरण में देखिए कितना साइलेंस हो गया है। लोग मधुबन में खींच खींच के क्यों आते हैं? लोग क्या बोलते कि हमको चुंबक की तरह खींचता है मधुबन। क्यों खींचता है? क्योंकि यहाँ पे बाबा मम्मा दादी दीदी और जितने भी ब्राह्मण आते हैं योग करके, इसे योग का जो है ना धधकता हुआ आग निकलता है जिससे सबको शांति मिलती है। और देखिए ये शांति वाली आग है, शांति वाली आग है ना, योग अग्नि है। अच्छा देखिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता रहता है तो ज्ञान की सुख की शांति की प्रेम की झूला में हमेशा इंसान झूलता रहता है, अतीन्द्रिय सुख के झूला में झूलता है। और ज्ञान की शांति की प्रेम की झरना बहती रहती है, बहती रहती है, बहती खत्म ही नहीं होता है, और ही बहती रहती है। जैसे हमारे भाई साहब के पास खत्म नहीं होता है जितना भी। और उसके बाद में क्या होता है, युद्ध जो होते ना, युद्ध के अंदर भी आपसी भाईचारा इतना अच्छा हो जाता है और अच्छे कार्य के लिए जाते हो, अच्छे काम में अपना ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, बुद्धि लगाते भी। नहीं तो दुनिया के यूथ क्या करते हैं, तोड़फोड़ में ही लगाते हैं, गंदे चीज खाते हैं। लेकिन यहाँ के जो यूथ है अच्छे कार्य में लगाते हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी है ना आपस में मिलकर भाईचारा से रहते हैं। अगर हम हमारे अंदर में चार घंटा की योग है, बेहद का सकाश देते हैं, पावरफुल अमृत वेला है, नुमा शाम का योग करते हैं, दिन भर छोटी छोटी ड्रिल करते हैं, 500 रुपए का अभ्यास अशरीरपन इतना जब करते हैं तो हमारे अंदर में ये सब आते हैं, हमारे जीवन रूहे गुलाब जैसे बन जाते हैं। ओम शांति।
फिर इतना करने से लाइट हाउस बन जाता है मधुबन।
इससे ये सब करने से विश्व में हम जो बाबा ने हमें विश्व कल्याण कर जो पार्ट दिया है वो पार्ट हम यहाँ प्ले कर रहे हैं। इससे करने से विश्व का कल्याण हो जाता है, जैसे हमारे सचिन भाई जी कर रहे हैं, इनकी वजह से हम जैसी आत्माएं भी जागृत हो जाती है और हमें पुरुषार्थ में और आगे बल मिलता है। थैंक यू भाई जी।
ओम शांति। ये सब चार घंटे का योग करने से हमारे घर मंदिर जैसे बन जाते हैं, प्रकृति से तो पठान बन जाती है।
चार घंटा योग करने से आत्मा पवित्र बन जाती है।
अभी जो बताया गया है ना कि हम ऑलरेडी जब योग तपस्या गहन अनुभूति करते हैं तो हमारा जीवन फरिश्ता बन जाता है। और जीवन में कभी भी आपसी मतभेद न हो, जिसके लिए हमको बाबा ने ज्ञान दिया है कि आपसी प्रेम हो, जिस प्रेम का झरना बहता रहता है जिसे हमें खुशी आंतरिक खुशी मिलती रहती है।
ओम शांति। यहाँ बताया गया है कि रोज हम अमृत वेला नियमित करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ एक फूल बताया है और बीच में एक चेहरा बताया है, तो हमारा जीवन गुलाब के फूल जैसा बन जाता है।
ओम शांति। तो हमने चार ग्रुप्स देखे, चार बटरफ्लाईज देखी, तो एक्टिविटी से सीखने की यही बात है कि हम कौन सी बटरफ्लाई है, चाहे हम मधुबन में है, सेंटर पर है, कहीं पर भी हमारे घर पर है, तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही संसार में प्रकंपन फैलेंगे, जो चारों ग्रुप्स ने वही एक्सप्लेन किया। तो हमको वो जो दो पॉजिटिव बटरफ्लाईज है ना, वैसी बटरफ्लाईज बननी है हमको, ताकि हमारा जो एम है कि संसार को हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैले तो वो फैल सकते हैं। और जो दो नेगेटिव बटरफ्लाईज है, इस पर आप और चिंतन कर सकते हैं कि देखो वो नेगेटिविटी का वाइब्रेशन कैसे फैलता है संसार में, तो हमको वो वैसी वाली बटरफ्लाईज बननी है जो पॉजिटिव बटरफ्लाई है, जो ज्ञान योग करती है। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे हमने स्टार्टिंग में सुना था बाबा कहते कि आप सब पूर्वज हो, तो हम जो भी कार्य करते हैं भले हमें उसका यहाँ पे भान होता है या नहीं, हमें उसकी कॉन्शियसनेस होती है या नहीं होती पता नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आगे जाकर कहीं ना कहीं निकलता है। जैसे हम पुरुषार्थ यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रारब्ध जो है हमें भविष्य में सत्युग में जाके मिलने वाली है, और वो प्रारब्ध केवल सत्युग त्रेता तक नहीं होती, द्वापर कलयुग के एंडिंग तक वो सारी प्रारब्ध चलती है ऐसे। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं हरेक कर्म पे हमें ध्यान देना है, जरूरी नहीं उसका इफेक्ट हमें आज ही मालूम पड़े, तुरंत मालूम पड़े, हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल के बाद में भी उसका इफेक्ट हमें मालूम पड़े। इसलिए जो इसमें बताया गया बटरफ्लाई इफेक्ट में हम जो भी कर्म करें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। ओम शांति।